जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो राधाष्टमी बहुत निकट है। कब है? अगले सोमवार को। आज सोमवार है, अगले सोमवार को राधाष्टमी है। तो बहुत पवित्र दिन राधाष्टमी का, लेकिन ज्यादा लोगों को ये रहस्य पता नहीं है। वेदों में बहुत गुप्त रहस्य है राधा रानी का, है ना। भगवद गीता में कृष्ण राधा रानी के बारे में नहीं बताते। क्यों? सामान्य ज्ञान है, भगवद गीता सामान्य ज्ञान है, है ना। राधा रानी का संकेत मिलता है जो प्रभुपाद उसमें से कहीं पर बताते हैं। दैवीं प्रकृति माश्रिता महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, जो महात्मा हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का संकेत है राधा रानी के लिए। तो राधा रानी जो है कृष्ण की दैवी प्रकृति हैं या अंतरंगा प्रकृति हैं, है ना। लेकिन कुछ शास्त्रों में राधा रानी के चरित्र का काफ़ी विस्तार से वर्णन है। उनमें से एक गर्ग संहिता है। तो गर्ग संहिता में तो राधा कृष्ण के विवाह का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो वैसे सामान्य दृष्टि में राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, है ना, और वो परकीय भाव में राधा कृष्ण का प्रेम जो है हुआ है। लेकिन ये जो बहुत रहस्य है वो ये है कि ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया, लेकिन इस विवाह को कोई मनुष्य नहीं देख सका। मानव समाज में ये विवाह नहीं हुआ। तो इसको हम सुनेंगे बड़े ध्यान से। तो ये जो कथा है वो बहुत दिव्य है, बहुत ही अद्भुत है। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये कथा सुना रहे हैं नारद जी, और किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलाश्व को। राजा बहुलाश्व मिथिलापुरी के राजा हैं। भगवान राम के समय में राजा शिरध्वज थे मिथिलापुरी के राजा, जिनकी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ हुआ। उन्हें शिरध्वज राजा की वंश परंपरा में, अब कृष्ण के समय जो राजा थे वो बहुलाश्व थे, और ये सब जो है राजा जो है शुद्ध भक्त हैं। वंश परंपरा में ही जो है सब के सब राजा शुद्ध भक्त हुए हैं। तो वे राजा बहुलाश्व सुन रहे हैं इस कथा को, किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को गोद में लेकर लाड़ लड़ाते और गौएं चराते हुए गांव के पास से बहुत दूर निकल गए। तो कृष्ण बहुत छोटे हैं, नंद जी अपने गोद में लेकर के और गौएं चराते हुए चले गए। धीरे धीरे भांडीर वन में जा पहुंचे, जो कालिंदी के जल का स्पर्श करके शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। गाचार्य नंदन हेमंक देशे सन्नालयं दूरतमं सकाशान कलिंद जाति रसमेर कंपितम नंदो विभांडीर वनम जगाम। तो नंद महाराज कहाँ पर आए हैं? भांडीर वन में। भांडीर वन 12 वनों में से एक है। वृंदावन एक है, उसी प्रकार से और भी 11 वन हैं, उनमें से एक भांडीर वन भी है, है ना। तो भांडीर वन में पहुंचे हैं कौन? नंद जी, और कृष्ण उनकी गोद में है। थोड़ी देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग प्रबल हो गया। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल कदम में वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर गिरने उड़ने लगे और भय उत्पन्न करने लगे। कृष्णे छया वेग तरोत वातो घने रभून में दुर्मम्बरम चाम तमालनी पे दुर्म पल्लव पतन भिरे जन भिरती वे भाको। उस समय महान अंधकार छा गया और नंद नंदन रोने लगे। नंद नंदन रोने लगे, पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाने लगे, दिखाई देने लगे हैं पिता की गोद में। नंद जी को भी भय हो गया, शिशु को गोद में लिए उन्होंने श्री हरि के शरण ली। कृष्ण को तो अपना पुत्र समझ रहे हैं, है ना, तो शरण ले रहे हैं हरि की, है कि रक्षा करें, मेरे पुत्र कृष्ण की रक्षा करो। हरि के शरण लिए उन्होंने। तदांधकारे महति प्रजाते बाले रुदत्यंग गते दिभीते नंदो भयं प्राप शिशुं च बिभ्रन् हरिं परेशं शरणं जगाम। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समान एक दीप्ति प्रकट हुई। सुने सब लोग, उसी समय करोड़ों सूर्यों के समान एक दीप्ति प्रकट हुई जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी और धीरे धीरे निकट आती सी जान पड़ रही। उस दीप्ति के भीतर नंद महाराज ने देखा ब्रजभानु नंदिनी श्री राधा को, श्रीमती राधा को देखा। किसको देखा? श्रीमती राधा को देखा। नंद महाराज ने श्रीमती राधा को देखा। तदेव कोट्यर के समूह है दीप्तिर आगच्छति वा चलति दिशासु बभूव तस्यां वृषभानुपुत्रीं तदर्थ राधाम नव नंद राजः। वे करोड़ों चंद्रमा की कांति धारण किए थी। कांति करोड़ों चंद्रमा के समान है और दीप्ति करोड़ों सूर्यों के समान है। कैसा अद्भुत राधा रानी का आश्चर्य है। उनके शरीर पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे हैं। ये नीला रंग जो है आदि वर्ण है, जैसे कृष्ण आदि पुरुष हैं तो जो नीला रंग है वो आदि वर्ण है, है ना। राधा रानी कृष्ण की आदि प्रकृति हैं, है ना। तो राधा रानी के शरीर पर किस रंग का वस्त्र है? नीले रंग का वस्त्र है, आदि वर्ण का वस्त्र है। चरणों में मंजीरों की ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। कोटिन्दु बिंब द्युति मादधानाम नीलांबराम सुंदर आदि सुंदर मादि वर्णाम मंजीर धीरे ध्वनि नूपुराणाम आभिभ्रतीम शब्द मतीव मंजुम। उस शब्द में कांची और कंकणों की झनकार मिली थी। रत्नमय हार मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से और भी उद्भाषित हो रही हैं। रत्नों के हार हैं मुद्रिका मतलब अंगूठी और बाजूबंद यहाँ के बाजूबंद हैं। नाक में मोती की बुलाक और नख बेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा है, कंठ में कंठा और सीमंत पर चूड़ा मणि है। कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। कांची कला कंकण शब्द मिश्राम हरांगुली अंगद विस्फुरंती श्री नासिका मोक्त के हंस की भी श्रीकंठ चूड़ा मणि कुंडलाभ्याम। श्री राधा के दिव्य तेज से नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया। तो कैसी अद्भुत कथा है। नंद महाराज जो है राधा रानी के सामने अपना मस्तक झुका रहे हैं, है? और हाथ जोड़कर कहते हैं राधे ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं और तुम इनके मुख्य प्राण वल्लभ हो, जो मेरी गोद में शिशु के रूप में है, ये साक्षात पुरुषोत्तम है, तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभ हो। तेजसाधर्षत आसु नंदो नत्वाथ तामाय कृतांजलि सन् अयम तो साक्षात पुरुषोत्तमस्तम प्रियासि मुख्यासि सदैव राधे। ये गुप्त रहस्य में गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। गर्ग जी ने मुझे ये गुप्त रहस्य बतलाया है। राधे अपने प्राणनाथ को मेरी गोद से ले लो, अपनी गोद में ले लो, मेरे अपने प्राणनाथ को मेरी गोद से अपने गोद में ले लो, ये बादलों की गर्जना से डरे हुए हैं डरे हुए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ ये रूप स्वीकार किया है, इसीलिए ऐसी भयभीत होने की बात है। हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम इस भूतल पर मेरी रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है, वास्तव में तो तुम सबके लिए दुर्लभ हो, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। कौन कह रहे हैं? नंद जी कह रहे हैं। गुप्तम तु दम गर्ग मुखे न वेदमी गृहाण राधे निजनाथ मंकां एनम गृहम प्रापय मेघ भीतम वदामि चेत्थम प्रकृतेर गुणाढ्यम। श्री राधा ने कहा, हे नंद, तुम ठीक कहते हो। देखो राधा रानी क्या बोलते हैं नंद महाराज को, नंद, सीधे नंद बोल रहे हैं। हे नंद, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ है, आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। नमामि तुभ्यं भुवि रक्षमां त्वं यथेच्छितं सर्वजनैर् दुरापम् अहं प्रसन्ना तव भक्ति भावान् मद्दर्शनं दुर्लभमेव नंद। नंद जी बोले, हे देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। देखो क्या वर मांगा है नंद महाराज ने, हैं, तुम दोनों के चरण कमलों में भक्ति हो और दूसरा आपके चरण कमलों की भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। यदि प्रसन्नासी तदा भवान में भक्तिर दृढ़ा को योगोपदाब्जे सताम च भक्तिस्तव भक्ति भाजाम संगा सदा मेथ योगे योगे च। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तत्तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। कैसी अद्भुत कथा है। राधा रानी ने कहा तथास्तु, तथास्तु मतलब ऐसा ही हो, वरदान दे दिया नंद महाराज को, वरदान दे दिया। क्या वरदान दे दिया? हाँ, साधु संतों को कर संग मिलता रहे और राधा कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति हो। दोनों हाथों में ले लिया अपने प्राणनाथ को। फिर जब नंद जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए तो श्री राधिका भांडीर वन में गई। तथा तो चोक्त्वाथ है हरिम कराभ्याम जग्राह नाथ राधा निजनाथ मंकां गते थे नंदे प्रणते ब्रजेशे तदा ही भांडीर वनम जगाम। पहले गोलोक धाम में जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, क्षमा करिए, गोलोक धाम से पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, कितनी पृथ्वी? 84 कोस की। 84 कोस का जो ब्रजमंडल है गोलोक धाम से पृथ्वी पर उतरा था, है ना, वो इस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई। गोलोक धाम की पृथ्वी 84 कोस की, जब भगवान आते हैं तो गोलोक धाम के 84 कोस की भूमि भी आती है। तो ये 84 कोस की भूमि जो है यहाँ पर है, इसमें फिट हो जाती है वो, और भगवान की लीला के अनुसार फिर उसका अलग अलग दृश्य बनता है। 84 कोस का ब्रजमंडल तो अभी भी है, है ना, ये भूमि नहीं है, भूमि आती है जब भगवान आते हैं तो, आते हैं तो भूमि आती है, जब भगवान जाते हैं तो भूमि चली जाती है, है ना, लेकिन धूल वो है अभी, वो धूल अभी है, है ना, जिसको समझना है। तो वो भूमि जो है जो प्रकट हुई थी, उतरी थी, इस समय दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई लीला के अनुसार। हाँ, पद्मराग मणि से जटित सोने की भूमि। कैसी भूमि है? सोने की भूमि है, पद्मराग मणि से जटित सोने की भूमि। उस भूतल पर तत्क्षण उस भूमि का आविर्भाव हो गया। गोलोक लोकाच पुरा समागता भूमिर निजम स्वम पुरा दधाना या पद में रागा दिखचित सुवर्णा भूवसा तत्क्षण मेव सर्वा। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। यमुना भी तट पर सोने के निर्मित महलों से संपन्न हो गई। यमुना के तट पर कैसे महल हैं? सोने के महल हैं और रत्नों की सीढ़ियां हैं, रत्नों की सीढ़ियां हैं यमुना के तट पर। वो प्रकट हो गई, संपन्न हो गई। वृंदावनम दिव्य वपुर दधानम वृक्षेर वरे काम दुघे सहेव कलिंद पुत्री चा सुवर्ण सौध श्री रत्न सोपान मयी बभूव। गोवर्धन पर्वत रत्नों की शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। शिलाएं कैसी हैं? रत्नों की। और सोने के शिखर सब ओर से उद्भासित होते मत वाले भ्रमरों और झरनों से सुशोभित और कंदराओं द्वारा वो पर्वतराज अत्यंत ऊंचा गजराज की भांति सुशोभित होने लगा। गोवर्धनो रत्न शिला मयो भून सुवर्ण श्रृंगे परितास भुरत भी मताली भिर निर्जर सुंदरी भिर दरी भिर चांग करीब राजन। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन है और प्रांगण और दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। इस विवाह का सब कुछ जो दृश्य है वो प्रकट हो गया। यहाँ पर बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पर सब भगवान को जो है तैयार है। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा प्रकट हो गई। मधुपों मयूरों कपोतों और कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। तदाने कुंजोपि निजम वपुर दधन सभायुतम प्रांगण दिव्य मंडपम वसंत माधुर्य धरम मधुमृतैर मयूर पारावत कोकिल ध्वनिम। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सोने रत्नों से खचित स्वर्ण रत्न आदि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थीं। वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ और सोने स्वर्णमय सुंदर कमल खिले हुए थे और उन कमलों पर बैठी हुई मधुपावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थीं। सुवर्ण रत्नादि खचित पटेर वृतम पतत पताकावलि भिर विराजितम सरस्फुट भिर भ्रमरावलि धितैर विचर्जितम कांचन चारु पंकज। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सामने खड़े हो गए। राधा की गोद में थे छोटे से बालक, अभी क्या हो गए? खड़े हो गए किशोर अवस्था में भगवान, है ना। तो राधा रानी पहले किशोर अवस्था में किशोरी हैं, है ना, और कृष्ण शिशु अवस्था में है। लेकिन अभी विवाह के समय क्या हो गए? वो किशोर अवस्था के हो गए। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में बंसी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि कामदेवों को मोहित करने लगे। तदेव साक्षात पुरुषोत्तमोत्तमो बभूव कैशोर एव पुरघन प्रभाम पीताम्बरा कौस्तुभ रत्न भूषणो वंशी धरो मनमत राशि मोहनहा। उन्होंने हंसते हुए प्रीतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री इकट्ठी करके रखी हुई थी। सब कुछ है, कोई लाने वाला नहीं है, सब कुछ पहले से रखा है। मेखला है, कुशा है, सप्त मृत्तिका यानी सात प्रकार की मिट्टी और जल से भरे कलश उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। भुजे संग्रह हसन प्रियाम हरिर जगाम मध्य सुवाह मंडपम विवाह संभारियुता समेखलम सुदर्भ मृद वारी घटादि मंडितम। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। कैसे हैं दोनों? मेघ और विद्युत, मेघ बादल में जो है बिजली चमकती है, है ना, तो कितना सुंदर लगता है, लेकिन वो बिजली स्थिर नहीं रहती है, एक सेकंड के बाद लुप्त हो जाती है ना। लेकिन अगर बिजली स्थिर हो जाए तो कितनी शोभा होगी बादल की। तो ऐसे भगवान कृष्ण के अंदर राधा रानी ऐसे हैं जैसे बादल में बिजली स्थिर हो गई हो, है ना। तत्रैव सिंहासन उद्गते वरे परस्परम सम्मिलित विरेजित हो परम ब्रवंतो मधुरम च दंपति स्फुरत प्रभो खेचा तटिन घना विवेम। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता ब्रह्मा जी आकाश से उतरकर श्री कृष्ण के सामने आए। ये जो सौभाग्य है वो एकमात्र एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, आप समझ रहे हैं ब्रह्मा जी है? सबको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी है वे श्री कृष्ण के सामने आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर वाणी द्वारा चारों मुखों से स्तुति करने लगे। तदाम्बरान देव वरो विधि प्रभु समागत परस सम्मुखे नत्वा तदंग्री हिषति गिरा भी कृतांजलि चारो चतुर्मुखो जगो। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं, अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं, अगणित ब्रह्मांडों के पालक हैं, पति हैं, ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्ति वत्सलम स्वयं तो संख्यान्य पतिम परात्परम राधा पतिम त्वाम शरणम व्रजामि हम। आप गोलोक धाम के नाथ हैं, आपकी लीलाओं का अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक में लीलाएं किया करती हैं। जब आप ही वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं तब ये राधा लक्ष्मी रूप में आपके साथ सुशोभित होती हैं। तो हर जगह आपके साथ हैं ये हैं और आपके ही रूप के अनुरूप ये रूप धारण करते हैं। जैसा आपका रूप होता है उसी के अनुसार ये भी रूप धारण करते हैं और आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो वैकुंठ में आप विष्णु के रूप में हैं तो ये लक्ष्मी के रूप में रहती हैं। गोलोकनाथ हस्तमति वलीलो लीलावती यमन जलो के लीला वैकुंठ नाथ होसी यदा तुमेव लक्ष्मी तदेयम वृषभानु जाही। जब आप श्री राम के रूप में इस भूतल पर अवतीर्ण होते हैं तब ये जनक नंदनी सीता के रूप में आपकी सेवा करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमला देवी हैं। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, जब आप यज्ञ पुरुष के अवतार धारण करते हैं तो ये आपके साथ में दक्षिणा के रूप में निवास करती हैं। यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा। तुम रामचंद्रो जनकात्मजेयम् भूमो हरिस्तुम कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयम् श्री दक्षिणास्त्री प्रति पत्नी मुख्या। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह हैं तो आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं। नरसिंह भगवान के साथ में रमा देवी हृदय में निवास। आप ही नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं तो आपके साथ में ये परम शांति के रूप में विराजमान है। नर नारायण तो ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो जब नर नारायण का अवतार होता है ब्रह्मचारी के रूप में तो भी आपके साथ हैं। किस रूप में हैं? परम शांति के रूप में हैं। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं वहाँ उसी के अनुरूप देह धारण करके छाया की भांति आपके साथ रहती हैं। तुम नरसिंहोऽसि रमा तदेयम् नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा तुयं शान्तिरतीव साक्षात् छायैव याता च तवानुरूपा। आप ब्रह्म हैं तो ये प्रकृति हैं। जब आप काल रूप होते हैं तो इन्हें प्रधान के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महातत्व के रूप में स्थित होते हैं तो ये सगुण माया के रूप में स्थित होती हैं। जब आप मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतरात्मा के रूप में स्थित होते हैं तब ये लक्षणा के रूप में विराजमान होती हैं। जब आप विराट रूप धारण करते हैं तो धारणा के रूप में आपके साथ रहती हैं। हे पुरुषोत्तमोत्तम, आपका ही श्याम और गौर दो प्रकार का तेज सर्वत्र विदित है, श्याम तेज और गौर तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। हिदांतर आत्मा विदस्य तुर्भिन् तदा द्वयम् लक्षण रूपे वृत्तिः, यदा विराट देह धरस्त्वमेव तदाखिलं वा भुवि धारणीयम्, श्यामं च गौरं विदितं द्विधामः, तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमः गोलोक धामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। जो इस जुगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, तो जो मैंने पढ़कर सुनाई ना, ये स्तुति जो है इसका महात्म्य क्या है, जो इस उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है वो समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है। हरि बोल, हरि बोल। और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सदा पठेद यो युगलस्तवं परम गोलोक धाम परम प्रयाति सहा, यह वे सौंदर्य समृद्धि सिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हैं भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। तथापि यद्यपि आप तो नित्य जुगल हैं, नित्य जुगल दंपति हैं, है ना, तो नित्य का मतलब कभी भी आप अलग नहीं हुए एक दूसरे से, है ना, और सदा प्रीति आप में जो है बनी रहती है। नहीं, विवाह तो इसलिए होता है, संबंध जो नहीं था उस संबंध को बनाया जाता है, और प्रीति नहीं है तो प्रीति बनाई जाती है, इसलिए होता है। इन ऐसी तो कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं फिर भी व्यवहार के लिए विवाह विधि संपन्न कराऊंगा। यदा युवाम प्रीति युतो च दंपति परात परो तावन रूप रूपितो तथापि लोके व्यवहार संग्रहात विधि विवाहस्य तु कारयाम्यहम्। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। विवाह में सबसे पहले कुंड में अग्नि जलाई जाती है, और अग्निदेव के सामने बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पाणि ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। तदा सोत्थाय विधिर होतासनम प्रज्वाल कुंडे स्थितयोस्तयो पुरहा स्तुते करें ग्राह विधिम विधान तो विधाय धाता समवर्थितो भवन। ये सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव के साथ परिक्रमाएं करवाई। तब उन दोनों को प्रणाम करके विधाता ने उन दोनों से सात मंत्र पढ़वाए। सवाहयामास हरिम च राधिकाम प्रदक्षिणम सप्त हिरण्यरे तथा ततस्ततोतम प्रणिमय्य वेदविन तो पाठयामास च सप्त मंत्रकम। देखो ब्रह्मा जी कितना सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी आज्ञा दे रहे हैं राधा कृष्ण को, परिक्रमा करो अग्नि की सात परिक्रमा करो, तो सात परिक्रमा कर रहे हैं, फिर मंत्र पढ़वा रहे हैं, तो मंत्र जो है ब्रह्मा जी पढ़ते हैं तो दोहराते हैं, राधा कृष्ण मंत्र दोहराते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवा कर और कृष्ण का हाथ राधिका के पीठ में स्थापित करके फिर मंत्र पढ़वाए, है ना, तो राधा रानी का हाथ कृष्ण के पक्षस्थल पर और कृष्ण का हाथ राधा के पीठ में रखवा करके विधाता ने उनसे मंत्रों का ऊंचे स्वर में पाठ करवाया। ततो हरेर वक्षसि राधिकाया करम जनसंतापे हरे करम पुनः श्री राधिकाया किल पृष्ठ देश के संस्थापे मंत्रांच विधि प्रपाठयन। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनवाई। राधा रानी को आदेश दिया केसर की माला, केसर युक्त माला कृष्ण के गले में धारण करवाएं, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इस तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी राधा के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्नि देवता को प्रणाम करवाया। अब अग्नि देवता को प्रणाम करो। राधा कराभ्याम प्रदत्त मालिकाम किंजल किनीम कृष्ण गले ली नादिनीम हरे कराभ्याम ब्रज भानुजा गले ततश्च बहिनीम प्रणमय्य वेदवे। और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री को सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। तो राधा रानी के पिता का भी काम वही कर रहे हैं है? पुरोहित का भी काम वो कर रहे हैं है? और राधा कन्या के पिता का भी कि पानी ग्रहण कौन कराएगा, पिता ही कराएगा है ना। तो अपने पुत्री का हाथ जो है वर के हाथ में कौन देता है, पिता देता है। तो वही जो है पिता भी बने राधा रानी के। संवासयामास सुपीठे उच्चतम कृतांजलि मौनयुतो पितामह तो पाठयामास तु पंच मंत्रकम समर्प्य राधाम चापि देव कन्यकाम। हे राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। तो ये जो कार्यक्रम है ये मनुष्यों का नहीं है। अभी तो हम लोग सुन रहे हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। उस समय तो किसी ने सुना भी नहीं था मनुष्यों के समाज में तो ये बात सुनने में भी नहीं आई, देखने की बात तो बहुत दूर है ना। लेकिन कौन देख रहे हैं, ब्रह्मा जी करा रहे हैं विवाह, लेकिन कौन देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है देखने वालों की, बहुत बड़ी संख्या है। कौन है, देवता लोग हैं है ना। लेकिन वो लोग ऊपर से देख रहे हैं, सब ऊपर से देख रहे हैं, पृथ्वी में कोई नहीं है, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और विद्याधरियों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए मंगल गान किया। पुष्पाणि देवा वृषत दान पै विद्याधरी भी नन्नतो सुरांगना गंधर्व विद्याधर चारणा कलम सकिन्नरा कृष्ण सुमंगलम जगहो। मृदंग, वीणा, मृचंग, वेणु, शंख, नगाड़े, दुंदुभी और करताल आदि बाजे बजने लगे। ये सब कौन बजा रहे हैं, हाँ देवता लोग बजा रहे हैं ये सब। और आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। मृदंग वीणा मुरुयष्टि वेण वहा शंखा नका दुंदु भया सताल का ने दुर्मुहुर देव वर देव स्थित जयत भून मंगल शब्द मुच्चक। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, हे ब्रह्मा आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। अब दक्षिणा भगवान जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए, आपको दक्षिणा क्या दूं है? तो वर जो है अब पुरोहित को दक्षिणा देना चाहता है, तो भगवान कहते हैं अपनी दक्षिणा बताइए, अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। हरि बोल साधारण चीज थोड़ी मांगेंगे ब्रह्मा जी। उवाच तत्रैव विधिं हरि स्वयं यथेक्षितं त्वं मद विप्रदक्षिणां तदा हरिं प्राह विधि प्रभो मे देहि तदङ्घ्रियोर्निजे भक्ति दक्षिणां। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभिष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के युगल चरणों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। राधा रानी के दोनों चरणों को उन्होंने क्या किया, अपने हाथों मस्तक से बार बार प्रणाम किया और फिर अपने धाम को प्रस्थान किया। उसमें प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। ब्रह्मलोक से आए है ना, और पृथ्वी लोक में जो कार्य किया है वो इतना हर्षोल्लास हो रहा है, जा रहे हैं अपने धाम में है ना। लेकिन वो आनंद उनको अपने धाम में नहीं मिला जो यहाँ पर मिला। तथास्तु वाक्यम वदतो विदिर हरे। श्री राधिकाया से प्रदयतोयम शुभम नत्वा कराभ्याम शिरसा पुनः पुनर् जगाम गेहम प्रणतः प्रहर्षितः। तब निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य और मनोरम चतुर्विध अन्न श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया। अब यहाँ पर लीलाएं हो रही हैं, तो सबसे पहली लीला क्या है? भोजन की। तो प्रियतमा द्वारा अर्पित चतुर्विध अन्न है, हम लोग बोलते हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, है ना, चर्व चोष्य लेह पेय, इस तरह से होते हैं ना चार प्रकार का। तो राधा रानी ने अपने हाथों से कृष्ण को भोजन कराया और भगवान हंसते हंसते खा रहे हैं राधा रानी के मुख से, अपने हाथ से नहीं खा रहे हैं, राधा रानी के हाथ से भगवान हंसते हंसते खा रहे हैं। और राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उन्हें भी भोजन ग्रहण किया। राधा रानी अपने हाथ से नहीं खाती हैं, कृष्ण के हाथ से वो खा रही हैं, और कृष्ण अपने हाथ से नहीं खा रहे हैं, राधा रानी के हाथ से खा रहे हैं। ततो निकुंजेषु चतुर्विधान्नं दिव्यं मनोज्ञं प्रिया प्रदत्तं जघास कृष्णः प्रसन्न परात्मा कृष्णेन दत्तं क्रमुकं च राधा। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले, वे दोनों मधुर बातें करते और वृंदावन यमुना और वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तथा करेणापि करम प्रियाया हरि गृहीत्वा प्रचाल कुंजे जगामे जलपन मधुरम प्रपश्यन् वृंदावनम श्री यमुनाम लताश्च। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आते हुए श्री राधा ने उनके पीतांबर का छोर पकड़ लिया। भगवान छिपे हैं तो राधा रानी हंसते हुए उनका पीतांबर पकड़ लेती हैं। श्रीमल्लता कुंज निकुंज मध्ये निलीयमानं प्रहसन्तमेव विलोक्य शाखान्तरितं च राधा जग्राह पीतांबर मां व्रजन्ति। फिर राधा जी माधव के कमलों राधा जी माधव के कर कमलों से छूटकर भागी और चरणों के नूपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गईं। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गईं तब पुनः उठकर भाग चलीं। दुद्राव राधा हरिहस्त पद्मा झंकार मंग्रो प्रतिकुर्वती को निलीयमाना यमुना निकुंजे पुनर्ब्रजंती हरि हस्त मात्रा। जैसे तमाल सुनहरी लता से शोभित होता है, कैसा तमाल वृक्ष सुनहरी लता से शोभित होता है, तो कृष्ण तमाल वृक्ष के समान है और राधा रानी सुनहरी लता के समान है। जैसे तमाल सुनहरी लता से शोभित होता है और मेघ चपला से शोभित, मेघ बादल में बिजली, और जैसे नीलम का पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। नीलाद्रि राजो निकषास में खन्या श्री राधेयाद्यस्तु तथा रमण्या यथा तमाला कलधौतवल्या घनो यथा चंचले याचकास्ति। रास रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास करते हुए लीला का रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कलकूजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। श्री रास रंगे जन वर्जिते परे रे में हरि रास रसे न राधया वृंदावने भृंग मयूर कूजल लते चरते व्रति स्वरहा परहा। श्री कृष्ण ने जहाँ मतवाले भ्रमर गुंजारव करते थे, बहुत से झरने और सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें लता बल्लरियां प्रकाश फैलाती थीं, गोवर्धन के उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। श्री राधया कृष्ण हरि परात्मा नर्त गोवर्धन कंदरासो मत्तालिसो प्रस्रवण सरोभिर विराजितासो द्युति मल्लतासो। तब श्री कृष्ण यमुना में प्रवेश करके श्री राधा के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीन कर भाग चले। राधा रानी के हाथ में कौन सा कमल है? लक्षदल कमल। लक्षदल समझते, लक्ष्य माने एक लाख, दल कैसा कमल है जिसमें एक लाख दल हो, कोई अष्टदल कमल होता है, आठ दल वाला कमल होता है, कोई षोडश दल सोलह दल वाला कमल है, कोई बत्तीस दलों वाला कमल है, हैं? राधा रानी के हाथ में जो कमल है वो कितने दलों का है? एक लाख दल का, लक्ष्य दल कमल। और कृष्ण ने क्या किया, वो छीन करके भागे, राधा रानी हाथ से वो लक्ष्य दल कमल छीन करके भागे, यमुना जल में भाग रहे हैं, यमुना जल में भाग रहे हैं। चकार कृष्ण यमुनाम समेत्य परम विहारम वृषभानुपुत्र्या राधा करा लक्ष्य दलम सपद्मम धावन गृहीत्वा यमुना जलेषु। तब श्री राधा ने भी हंसते हैं हंसते उनका पीछा किया और उनका पीतांबर और बंसी और बैंत अपने अधिकार में कर ली, एक के बदले तीन चीजें छीन ली। कृष्ण राधा रानी की एक चीज छीनी तो उनकी एक चीज कृष्ण के तीन चीजों के बराबर है, पीतांबर ले लिया और क्या लिया, बांसुरी ले ली और बैंत, बैंत भी ले ली, तीनों ले ली। श्री हरि कहने लगे मेरी बंसी दे दो, तब राधा ने उतर दिया मेरा कमल लौटा दो। राधा हरे पीत पटम च बंसीम वेत्रम गृहीत्वा सहसा हसंती देहिति बंसीम ददतो हरिश्च जगाद राधा कमलम नु देही। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया, फिर राधा ने भी पीतांबर बंसी और बैंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तस्य ददो देव वरोथ पद्मम राधा ददो पीत पटम च बंसी वेत्रम च तस्मै हरे तयो पुनर्बभूव लीला यमुना तटेषु। तब भांडीर वन में जाकर नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया, उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींची और उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार किया। ततश्च भांडीर वने प्रियाया चकार श्रृंगार मलम मनोज्ञम पत्रावली यावक कंजलाद्य पुष्प सुरत्न ब्रज गोप रत्नः। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि का हरि को श्रृंगार धारण करने के लिए तैयार हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। क्या समझे? कृष्ण तो राधा रानी का श्रृंगार करा दिया, अब वो श्रृंगार कराने लगी तो क्या हो गए, छोटे से बालक। लो करो श्रृंगार। हरे च श्रृंगार मलम प्रकर्तुम समुदेता तत्र यदा हि राधा तदैव कृष्णस्तु बभूव बालो विहाय कैशोर वपुः स्वयं ही। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, हाँ उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। अब कृष्ण को क्या चाहिए, माता का स्तन चाहिए। रो रहे हैं। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी। अब वो रो रहे हैं और ये भी रो रही हैं, दोनों रो रहे हैं। विलाप करने वो बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो, मेरे ऊपर मेरे साथ माया क्यों फैलाते हो। नंदेन दत्तम शिशुमेव यादृशम भूमो लुठंतम प्रदंद मायो हरिम विलोक्या सुरोध राधिका तमोसि मायाम नो कथम हरे मयी। इस प्रकार रोते हुए श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, अब बालक तो बोलेगा नहीं है? तो कृष्ण तो बोल नहीं सकते हैं, शिशु हैं, है ना, तो अब राधा रानी से कौन बोल रहा है, आकाशवाणी, आकाशवाणी ने कहा, राधे इस समय शोक ना करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ समय के पश्चात पूर्ण होगा। इत्थम रुदंती सहसा विषन्नाम आकाश मांगा तदैव राधाम शोचम नु राधे हे मा कुरु तुम मनोरथस्ते भविया हि पश्चात। ये सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की पत्नी यशोदा जी के घर गईं। अब गोद में ले लिया, कृष्ण को गोद में ले लिया, और देखो विवाह हो चुका है। अब विवाह के बाद जो है फिर गोद में लेकर के आ गई, हैं कहां पर आ गई, यशोदा के पास आ गई, और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पति ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। राधा रानी ने बोली, है ना, सब लीला जो है कितनी गुप्त है, ये हम लोग सुन रहे हैं, है ना, लेकिन उस समय बिल्कुल गुप्त थी, किसी ने नहीं सुना था, तो हम लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं कि नहीं हम लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम लोग सुन रहे हैं, उस समय किसी को भी पता नहीं चला इस लीला के बारे में। श्रुत्वाथ राधा ही हरिम गृहीत्वा गधा सुगे ब्रजराज पत्न्या दत्वा च बालम किल नंद पत्न्या उवाच दत्ता पति ते च भर्त्रा। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, नंद गृहिणी मतलब यशोदा जी ने, यशोदा जी ने राधा से कहा, हे राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत मेरे लाल की पूर्णतया रक्षा की है, तुम धन्य हो। थैंक्स, राधा रानी को यशोदा जी धन्यवाद देती हैं। वाज राधाम नृप नंद गेहिनी धन्या से राधे ब्रजभानु कन्य के तो यास सुर में परिरक्षित हो भयान मेघावृते व्योमनी भयातुरो वने। यूं कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके गुणों की प्रशंसा की। इससे श्री राधा को प्रसन्नता हुई, वे यशोदा जी की आज्ञा लेकर धीरे धीरे अपने घर चली गईं। संपूजिता श्लाघित सन गुणा सा सुनंदिता श्री वृषभानु पुत्री तदा हनु ज्ञाप्य सोमती सा सने सुगे हम ही जगाम राधा। अब देखिए इस कथा का जो है महात्म्य बताया जा रहा है, कि सुनने का क्या महात्म्य है। आप लोग सुन रहे हैं, सुनिए कथा का महात्म्य क्या है। हे राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया, जो लोग इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं, तो हम लोग तो कर रहे हैं ना यही, जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इत्थम हरेर गुप्त कथा च वर्णिता राधा विवाहस्य सुमंगलावृता सुता च येर्वा पठिता च पाठिता तान पाप वृंदाना कदा स्पृशन्ति। ये बहुत सुंदर कथा है, राधा रानी के विवाह की, है ना। वैसे राधा रानी का विवाह इस पृथ्वी में मतलब नहीं बताया जाता, है ना, मानव समाज में विवाह नहीं हुआ राधा रानी का, है ना, लेकिन फिर भी देवताओं के समाज में और ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह हुआ है, है ना। तो ये बहुत दिव्य लीला है, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं, मैं प्रश्न करूं, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो नंद जी कृष्ण को गोद में लेकर के कहाँ पर गए थे, भांडीर वन में गए थे, है ना, भांडीर वन में गए थे। और नंद जी वैसे रहते कहाँ थे, नंदगांव में रहते थे, नंदगांव में रहते थे और भांडीर वन में गए। वैसे नंदगांव में उन्होंने स्थानांतरण किया था बाद में, जब कृष्ण 3 साल 4 महीने के थे और गोकुल में, गोकुल में थे ना, तो गोकुल में जब वृक्षों को उखाड़ा था तो इस उत्पात के कारण गोकुलवासियों ने स्थान छोड़ा था उसके बाद, है ना। तो जो भी हो, अब गोकुल से गए नंद जी भांडीरवन या नंद ग्राम से गए, जहाँ से भी गए भांडीरवन में गए थे, है ना, भांडीरवन में गए थे, है ना। और उस समय कृष्ण की इच्छा से क्या हो गया, क्या हुआ था उस समय अचानक, हाँ बारिश नहीं हुई, हाँ हवा तेज चलने लगी और भय उत्पन्न होने लगा, बड़ा भय उत्पन्न होने लगा और अंधकार, अंधकार भी छा गया, है ना, मेघों की घटा से अंधकार छा गया, भय उत्पन्न होने लगा, है ना। और नंद महाराज के साथ गौएं हैं, है ना, तो उनको चिंता हो गई, है चिंता हो गई कि अब गौओं को जो है छोड़ करके बालक को लेके नहीं जा सकते, है ना, और यहाँ बालक को जो है भय हो रहा है ना। तो इसलिए दुविधा, नंद महाराज को बड़ी दुविधा हो गई। तो वो चाहते हैं कोई मतलब मेरे बालक को ले जाए मेरे घर, क्योंकि वे गौओं के साथ वहाँ रुके हुए हैं, तो उनको रोकना जरूरी है, गौओं को छोड़ करके नहीं जा सकते, है ना। तो उसी समय राधा रानी आई, है ना। तो राधा रानी के शरीर से कितना प्रकाश निकल रहा था, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, है ना, और उनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति है, है ना। तो नंद महाराज ने उनको प्रणाम किया, है। तो कृष्ण का तत्व और राधा रानी का तत्व नंद महाराज को किसके द्वारा पता चला था, गर्ग जी के द्वारा पता चला, गर्ग मुनि के द्वारा पता चला था, है ना इनका। तो राधा रानी को जो है उन्होंने प्रणाम किया और ये भी कहा कि मेरे सौभाग्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, और फिर अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? आप दोनों के चरण कमलों में भक्ति हो और आपके चरण कमलों के भक्ति से भरे हुए साधुओं का संग मिले, है ना। आजकल साधु तो बहुत मिलते हैं लेकिन राधा कृष्ण के चरणों के भक्त थोड़े होते हैं, है ना। ऐसे नाम के साधु हैं, वेशभूषा में साधु हैं, लेकिन कहाँ, हाँ। तो ऐसे भक्तों का जो है हमें संग प्राप्त होता रहे, इस तरह से उन्होंने वरदान मांगा। और जब राधा रानी कृष्ण को गोद में लेकर के आई, भांडेर वन में आई, है ना, तो समय वो भूमि फिर कैसी हो गई, हाँ, वो गोलोक धाम से जो कितनी भूमि आती है, 84 कोस की भूमि, 84 कोस की परिक्रमा जो की जाती है ब्रजमंडल में। तो ये इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है, है ना, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो उस समय इसी भूमि में जो है गोलोक धाम की भूमि आकर के फिट हो जाती है, है ना। और जब भगवान जाते हैं तो भूमि चली जाती है, है? हाँ, तो इसलिए वो बड़ी मतलब महत्वपूर्ण भूमि है, है ना। तो उस समय भूमि का जो है मतलब अलग ही रूप हो गया, कैसी भूमि हो गई इस समय, सोने की भूमि और पद्मराग मणि जड़ी, पद्मराग मणि से जटित स्वर्ण भूमि हो गई, है ना। और यमुना जी के जो सोपान वो किस चीज के बन गए, रत्नों के बन गए सोपान, यमुना जी के सोपान है वो रत्नों के बन गए। और तट पर कैसे भवन है, सोने के भवन है, तट पर सोने के भवन है ना। और फिर भगवान कृष्ण उस समय क्या हो गए, किशोर अवस्था के हो गए, सामने खड़े राधा रानी गोद में थे, एकदम सामने खड़े हैं किशोर अवस्था के, है ना। अब किशोर किशोर हो गए, पहले शिशु रूप में थे, राधा रानी किशोरी हैं और कृष्ण शिशु रूप में हैं, किशोर किशोरी हो गए, है ना। और जो है उस विवाह मंडप में भी पहुंचे, सब कुछ तैयार, सब कुछ तैयार, कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, ये सब कुछ तैयार है, है ना। सिंहासन पर बैठ गए, है, हंस हंस के बातें कर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी आए, कहाँ से, ब्रह्मलोक से आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, मतलब कितना मतलब सेटिंग है भगवान की, सेटिंग कितनी है, है? कि भगवान जो है अब यहाँ बैठ गए विवाह के लिए, उस समय तुरंत ब्रह्मा जी आए, है ना। जबकि ब्रह्मा जी का जो समय होता है वो बहुत मतलब खतरनाक होता है, ब्रह्मा जी का समय बड़ा खतरनाक होता है, पता है, उनका 1 सेकंड जब बीता है तो यहाँ के 1,00,000 साल बीतते हैं, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड यहाँ के 1,00,000 साल बीतते हैं, तो उनका 1 सेकंड, कोई व्यक्ति ब्रह्म लोक में जाए और 1 सेकंड बिताए वहाँ तो यहाँ 1,00,000 साल बीत जाता है। तो ब्रह्मा जी कितनी जल्दी आए होंगे ठीक समय पर पहुँचने के लिए, कितनी जल्दी की होगी ब्रह्मा जी ने। और फिर ब्रह्मा जी ने जो है राधा कृष्ण का विवाह कराया, मंत्र पढ़वाए, प्रदक्षिणा करवाए, अग्नि को प्रणाम करवाया, है ना, हाथ रखवाया छाती में, पीठ में हाथ रखवाया, मंत्र बढ़वाए, है ना, इस तरह से ब्रह्मा जी ने जो है राधा कृष्ण से जो है सब मंत्र पाठ करवाए, है ना। उसके बाद फिर भगवान ने जब कहा ब्रह्मा जी से कि आप इच्छानुसार दक्षिणा मांगिए, हैं, तो क्या दक्षिणा मांगी? हाँ, चरण कमलों की भक्ति दक्षिणा, है ना। तो हमें तैयार रहना चाहिए ना, अगर कभी मौका मिले कुछ मांगने का तो क्या मांगेंगे? हाँ, तो तैयार, पहले से तैयार होना चाहिए, नहीं तो अचानक जो है अगर मौका मिलेगा तो फिर सोचेंगे क्या मांगे हैं, घर मकान मांग रहे हैं, कोई पत्नी मांगे, कोई पति मांगेगा, कोई बच्चे मांगेगा, कोई, है ना, सब कूड़ा करकट, कूड़ा करकट है सब, वही मांगे। हाँ, तो हमें भक्ति मांगनी चाहिए और इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा सोचते रहें कि भाई क्या मांगना है, क्या मांगना है ना। ठीक है, धन्यवाद। श्री राधा कथा महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। Thank you.